ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बताया, प्रतिनिधि सभा चुनाव की सभी तैयारियां हैं अंतिम चरण में। चुनाव की तैयारी संबंध में गृहमंत्री आर्याल ने अलग अलग जिले पहुंचकर लिया जायजा। सुरक्षा स्थिति को दुरुस्त बताते हुए सभी से निश्चिंत होकर मतदान करने का किया आग्रह। चुनाव के लिए तैनात हो रहे हैं 2,21,000 कर्मचारी और पाकिस्तान व अफगानिस्तान की लड़ाई में 275 तालिबान और 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का किया गया है दावा। पाक रक्षा मंत्री ने कहा, खुला युद्ध हो गया है शुरू। अब समाचार विस्तार से। इसी फागुन 21 तिथि को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी है। आज आयोग के साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सह सचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने ये बात बताई। उन्होंने मतपत्र, मतपेटिका सहित अन्य निर्वाचन सामग्री सभी जिलों में पहुंचाए जा चुकने की बात भी बताई। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सभी 753 स्थानीय तहों के सभी 6,743 वार्डो में जारी है। स्वयंसेवक प्रचालित कर फागुन 3 गति से शुरू हुआ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम फागुन 17 गति तक जारी रहेगा। मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी अपने अपने मतदान केंद्र की ओर जाने लगे हैं। चुनावी सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवाओं के संचालन व सहजीकरण, मतदान प्रक्रिया में समन्वय और प्रबंधन आदि को लेकर आवश्यक निर्णय आयोग कर चुका है। गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने सभी से निश्चिंत होकर मतदान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की प्रत्याभूति की जा चुकी है, इसलिए सभी निश्चिंत होकर मतदान करें। उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि कानून का उल्लंघन करने वालों को अंतरिम सरकार कानून के दायरे में लाएगी। ये बताते हुए कि मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं, उन्होंने कहा कि उस समय तक शांति सुरक्षा प्रबंधन और अधिक दुरुस्त हो जाएगा। चुनावी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री अर्याल आज दुलखा, उखलढुंगा लगात अलग अलग जिलों के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर सभी से निश्चिंत होकर मतदान करने का आग्रह किया था। प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए देश भर के सभी 165 चुनाव क्षेत्रों में 2,21,000 कर्मचारी तैनात होंगे। सभी 77 जिलों के कुल 165 चुनाव क्षेत्रों को मिलाकर कुल 23,112 केंद्रों और सिर्फ समानुपातिक को वोट डाले जाने वाले 143 अस्थायी केंद्रों में इतनी संख्या में कर्मचारी तैनात होंगे। ये जानकारी निर्वाचन आयोग के सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने ने दी। प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर नेपाल भारत सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन को चौकस कर दिया गया है। सीमा क्षेत्रों में जगह जगह अस्थायी सुरक्षा चेक पोस्ट खड़े किए गए हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। ये जानकारी धनुषा से हमारे संवाददाता अजय कुमार झा ने दी। प्रतिनिधि सभा चुनाव को लक्षित कर जारी की गई सूचना के तहत मध्य प्रदेश में 481 हथियार प्रशासन को सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर ने तथ्यांक के हवाले से बताया कि मध्य के कुल 8 जिलों में 2,531 इजाजत प्राप्त हथियार धारक हैं। उनमें से अब तक 481 हथियार सौंपे गए हैं और 2,050 हथियार सौंपने बाकी हैं। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू ने होली मनाते समय शांति सुरक्षा और आसन्न चुनाव को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थलों में भीड़भाड़, मेला, महोत्सव और शराब की बिक्री वितरण न करने का आग्रह किया है। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी मुक्तिराम रिजाल द्वारा जारी की गई सूचना में जुलूस, आमसभा या प्रचार प्रसार में उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह, झंडा, स्टिकर अंकित टोपी, टी शर्ट, जैकेट, झोला लगाए चीजों पर रोक लगाई गई है। सूचना में साफ किया गया है कि किसी की मर्जी के खिलाफ उस पर रंग या पानी डालने, शराब सेवन कर सार्वजनिक मर्यादा भंग करने, हल्ला फसाद करने जैसी गतिविधियों को कानून के विपरीत माना जाएगा। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नेपाल के लिए नवनियुक्त चीनी राजदूत चांग माओ मिंग ने शिष्टाचार भेंट की है। भेंट के क्रम में प्रधानमंत्री कार्की ने नेपाल की चुनावी प्रक्रिया में चीन से प्राप्त सदाशयता के प्रति कृतज्ञता जताते हुए विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों में चीन के सहयोगों के प्रति नेपाल सरकार और नेपाली जनता की ओर से उन्होंने आभार भी जताया। 5 साल पहले शिलान्यास किए गए कंचनपुर के वेदकोट में दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कार्य अब तक आगे नहीं बढ़ सका है। विक्रम संवत 2077 फागुन में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। यह अब चुनावी बहस का विषय बना हुआ है। करीब 9 अरब रुपए की लागत अनुमान और 22,000 रोजगारी का अनुमान किया गया ये प्रोजेक्ट जंगल की कटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण कागज में ही सीमित है। ये जानकारी हमारे संवाददाता हरिश्चंद्र बाग ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आप नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानी वायुसेना ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में हवाई हमला किया। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर पलटवार किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच जारी तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन गजब लील हक नाम देते हुए खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले में 275 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। वहीं तालिबान का दावा है कि उसके हमले में पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए हैं। इन सबके बीच तालिबान शासन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने इस्लामाबाद में एक सैन्य कैंप पर बमबारी की। इसकी जानकारी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी है। तालिबान शासन के रक्षा मंत्रालय ने जमरूद मिलिट्री कॉलोनी और एबटाबाद पर भी हवाई हमले करने का दावा किया है। तालिबान शासन के रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, रक्षा मंत्रालय की वायुसेना ने आज सुबह लगभग 11 बजे हवाई हमले किए। इन हमलों का निशाना इस्लामाबाद के फैजाबाद के पास एक सैन्य कैंप और नौशेरा में एक सैन्य अड्डा था। इस हमले को लेकर तालिबान शासन वाले रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने पाकिस्तान की ओर से हुए एयर स्ट्राइक के जवाब में ये हमले किए हैं। अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पोस्ट किया है, पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक किए हैं। अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया प्रांतों में अफगान सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिसमें कथित तौर पर 2 ब्रिगेड बेस नष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने किसी संभावित हताहत का उल्लेख नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि खुला युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अहम सैन्य कदम उठाया है। पहली बार अमेरिकी सेना ने अपने F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों को इजरायली सैन्य अड्डे पर तैनात किया है। ये कदम ईरान से संभावित खतरे के खिलाफ इसराइल और अमेरिकी हितों की रक्षा करने का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में युद्धपोतों और विमानों की बड़ी तैनाती को बनाए रखा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ये तैनाती अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पहले इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इसराइल में अपनी सैन्य उपस्थिति को सीमित रखा था। बता दें कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सैन्य अभियानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका के विकल्प सीमित हो गए। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि ये जेट 24 फरवरी को ब्रिटेन के लैकेन हीथ एयरबेस से इसराइल के लिए रवाना हुआ था। इसराइली अधिकारी मानते हैं कि ईरान पर अमेरिकी हमला जरूरी हो सकता है। ये पूरी घटना ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका ईरान वार्ताओं के बीच हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को संबोधित करते हुए चेतावनी दी। उन्होंने पहले ही ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप और विदेशों में अमेरिकी बेस के लिए खतरा बन सकती हैं, और वे ऐसी मिसाइलें बनाने पर काम कर रहे हैं जो जल्द ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच जाएंगी। उन्होंने दोहरी रणनीति दोहराते हुए कहा कि मेरी पसंद इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेसी के जरिए हल करना है, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं दुनिया के नंबर एक टेरर स्पॉन्सर को कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने दूंगा। बता दें ईरान के विदेश मंत्रालय ने जिनेवा वार्ताओं को बहुत कंस्ट्रक्टिव बताया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बताया, प्रतिनिधि सभा चुनाव की सभी तैयारियां हैं अंतिम चरण में। चुनाव की तैयारी संबंध में गृहमंत्री अर्याल ने अलग अलग जिले पहुंचकर लिया जायजा। सुरक्षा स्थिति को दुरुस्त बताते हुए सभी से निश्चिंत होकर मतदान करने का किया आग्रह। चुनाव के लिए तैनात हो रहे हैं 2,21,000 कर्मचारी और पाकिस्तान व अफगानिस्तान की लड़ाई में 275 तालिबान और 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का किया गया है दावा। पाक रक्षा मंत्री ने कहा, खुला युद्ध हो गया है शुरू। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।